दोस्तों, हमारी आज की कहानी है साथी। चलिए शुरू करते हैं कहानी साथी। दाल पीसते पीसते उनका बूढ़ा शरीर हांफ रहा था। हर आहट पर वे चौंक उठती थी, कभी इस आशा से कि रामलाल होगा, कभी इस डर से कि बहुरानी क्लब से ना लौट आई हो। यूं देखा जाए तो बहुरानी बेचारी कभी कुछ नहीं कहती, खुद ही आगे बढ़ चढ़कर उनकी हर इच्छा हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। फिर भी कभी कभी संकोच हो ही जाता है। पिछले हफ्ते से बाबूजी 2-3 बार कचौड़ी खाने की बात कह चुके हैं। यूं यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी खांसी बढ़ जाने के डर से इधर तली हुई चीज़ें करीब करीब बंद सी हैं। माँ जी इस बात के औचित्य को समझती ना हो, ऐसा भी नहीं है। फिर भी बाबूजी का यूँ जरा सी चीज़ के लिए तरसते रहना उन्हें अपार कष्ट पहुँचाता है। इसीलिए आज उन्होंने मुंह अंधेरे उठकर दाल भिगो दी थी। बहुरानी के क्लब में जाने के बाद मैदा गूद कर रख दिया था और दाल पीसने बैठ गई थी। वे सारी सामग्री तैयार रखना चाहती थी जिससे प्रोग्राम में हेर फेर की गुंजाइश ना रहे। घड़ी में 4:30 बजे रामलाल तथा बहुरानी ने एक साथ ही रसोई में प्रवेश किया। ये क्या हो रहा है माता जी? रामलाल ने सिल लोड़े का चार्ज देते हुए पूछा। थोड़ी कचौड़ी बना लेंगे आज, जब देखो मरी डबल रोटी बच्चों के आगे रख देते हो, पता नहीं रोज रोज कैसे खा लेते हैं बेचारे, माँ जी ने कहा। रामलाल ने बहुरानी की तरफ देखा। मान लो कहना चाहता हो कि माता जी ने किस खूबी से बात बनाई है, पर बहुरानी के गंभीर चेहरे को देखकर चुपचाप अपना काम करने लगा। आपने क्यों तकलीफ की? रामलाल ग्राइंडर में 5 मिनट में पीस देता, बहू ने कहा। उसकी सरदा से माँ जी का मन तरल उठा। अरे करने को यहाँ है ही क्या, लेकिन एकदम काम करना छोड़ दूंगी तो ये हाथ पैर एकदम बेकार नहीं हो जाएंगे, कहते हुए वे रसोई घर से बाहर आ गई। मंदिर से कीर्तन की आवाज आ रही थी। 2-4 बार बड़के ने पूछा भी था, पड़ोस वाले एसपी साहब की माता जी भी रोज मंदिर जाती हैं, पर माँ जी ने मना कर दिया था। कह दिया था मेरी तो काशी विश्वेश्वर घर में ही है। तब शर्म भी आ गई थी, वो क्या सोचती होगी, बुढ़ापे में भी इन्हें घर का मुंह नहीं छोड़ता, वे क्या करें, सचमुच ही उनका घर से पांव नहीं निकल पाता। माँ जी कचौड़ियाँ गरम गरम बन रही हैं, आप और बाबूजी खा लीजिए ना, बहुरानी पास खड़े होकर बड़े प्रेम से कह रही थी। आ जाने दो बच्चों को, उनके साथ खा लूंगी। हाँ अपने बाबूजी को तुम दे आओ, माँ ने कहा। जब भी खाने की कोई चीज़ बाबूजी के कमरे में भेजनी होती तो वे बहुरानी को ही भेजती। बहू जब माथे पर पल्ला खींचकर बड़े अदब से ट्रे लेकर कमरे में जाती तो गर्व से उनका सीना फूल उठता। लगता है इस वक्त हर कोई आकर देखे कि उनकी बहू कितनी सुशील है। मेजर की बेटी है, कलेक्टर की बीबी है, पर जरा भी गरूर नहीं। बाबूजी को भी अच्छा लगता है, बहू उनकी सेवा कर रही है, उन्हें नौकरों के भरोसे तो नहीं छोड़ देती। शाम हुई और बच्चे किलकारियाँ मारते हुए घर में दाखिल हुए। दोपहर से सोया हुआ घर एकाएक जाग पड़ा। बहुरानी को बच्चों में उलझा देखकर माँ जी बाबूजी के लिए फिर एक प्लेट भर कर दे गईं। वे खा पी कर तृप्त होकर लेटे थे। और नहीं लोगे? नहीं भाई, फिर रात में खांसी चैन नहीं लेने देगी। तुम क्या रसोई घर में थी इतनी देर? मैं क्या करूँगी रसोई में, मुझसे भला क्या ये काम? अब वो तो आपकी लाडली बहुरानी है ना, जानती है कि ससुर जी को कसौड़ी पसंद है, इसलिए इतना सरजाम किया उसने। अच्छा, बाबूजी ने कहा। चेहरे पर एक तृप्त का भाव था। माँ जी शायद इसी के लिए दिन भर से खट रही थी। वैसी की वैसी प्लेट लेकर जब लौटी तब तक लड़का भी आ चुका था। आज बड़ी देर कर दी बेटा? नहीं अम्मा, रोज का ही तो समय है। आज क्या कचौड़ियों का प्रोग्राम है? बाबूजी को ज़्यादा तो नहीं? अरे कहाँ खाते हैं ये, देख पूरी की पूरी प्लेट लौट आई है, वे तो खुद ही बेचारे डर डर रहते हैं। अम्मा जरा जरा एक बात थी, बाबूजी ने अलका को बुलाया है। क्या? पता नहीं रे क्यों। देखो एकदम इस तरह से मत बुला लिया करो, अभी राखी पर ही तो नीलिमा यहाँ से गई है, तुम तो जानते हो लड़कियों का बुलाना इतना सहज नहीं है, फिर बच्चों की परीक्षाओं के दिन है, घर में मेहमान हो तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। कब आ रही है वह? माँ जी ने उत्सुकता और आशंका से भरकर पूछा। लिखा है शायद अगले महीने आए, लेकिन बाबूजी से कहो अब चुप कर जाएं, आएगी तो देखा जाएगा। और उसने इधर उधर देखकर एक पोस्ट कार्ड माँ जी के हाथों में रख दिया। अपनी छोटी वाली बेटी का पोस्ट कार्ड वह देर तक पढ़ती रही। थोड़ी ही देर में उनके आंसुओं में सारी लिखावट घुलती नजर आई। उफ, क्या जिंदगी है, लड़कियों को मन भर के बुला भी नहीं सकते। इससे तो अपना गांव वाला घर अच्छा था, जब चाहो बुला लिया, किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाबूजी बार बार बीमार पड़ते रहे, बच्चे क्या हर बार छुट्टी लेकर देखने को आ सकते थे। बड़े बेटे ने कहा, यहाँ आप लोग किस लिए पड़े हैं, हम लोग आखिर किस दिन काम आएंगे। आखिर आना ही पड़ा, बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर, बेटे बहू ने सेवा सुसरा में कुछ भी उठाकर नहीं रखा था। दोनों लड़कियां और दोनों छोटे लड़के भी जब तक मिलने आ जाते थे, सारा खर्च चुपचाप उठाते हैं दोनों। पर बड़े बेटे को भी कहना ठीक है, लड़कियों के बुलाने पर 100 खर्च होते हैं। दोनों अपने अपने ससुराल में नाक ऊंची किए हुए हैं। मेरा भाई कलेक्टर है, हर बार उनकी विदाई 500 से कम नहीं पड़ती। और मुसीबत यह है कि बाबूजी से ये बातें कहना भी मुश्किल है। कहेंगे 150 रुपये पेंशन के पाता हूँ, लड़कियों को अपनी हिम्मत पर बुलाता हूँ। अब इनसे कौन कहे कि 150 में आजकल क्या होता है, 100 रुपये की तो दवाई ही आ जाती है। लड़का बेचारा सारा खर्च उठा रहा है, इसलिए पता नहीं चलता। कमरे में जाकर देखा, सोनू दादाजी को अखबार पढ़कर सुना रहा है। हर दो पंक्तियां पढ़ने के बाद खिड़की से बाहर झांकता हुआ लंबी उबासी भर रहा था। वे सोच ही रही थी कि किस उपाय से सोनू को मुक्ति दिलाएं कि एक चमचमाती हुई कार आते में मुड़ती दिखाई दी। ओ, शुक्ला अंकल आए हैं, मीनू टीनू आए हैं, कहता हुआ ताली पीटता सोनू बाहर भाग गया। बाबू जी ने भी अतिथि से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो माँ जी का मन घबरा गया। बैठक के कमरे में पहुँचते ही बाबू जी दूसरे आदमी बन जाते हैं। हमारे ज़माने में से शुरू करके पता नहीं क्या क्या किस्सा सुना डालते हैं। कमरे के वातावरण में अजीब सा तनाव भर जाता है, इसीलिए उनके बैठक खाने में जाने के प्रस्ताव से घबरा कर माँ जी ने कहा, सुनो, लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक बड़ी अच्छी झांकी लग रही है आज। बड़का कह रहा था कि आप लोग जाएं तो गाड़ी तैयार कराऊं। अरे वाह, तब तो जरूर जाएंगे भाई, हमारा सूट निकाल दो, अभी तैयार हुए जाते हैं। छुटकारे की सांस लेते हुए माँ जी ने सूट निकाला। यह फुलोवर कंटोप और दास्तानों का सेट था जो मंजली बहू ने बुन कर भेजा था। इसे निकालते हुए माँ जी ने बड़ी सफाई से अलका की चिट्ठी संदूक में डाल दी। अब कभी भी बात छिड़ने पर वे कह सकती हैं कि आप चिट्ठी पढ़कर भूल गए थे। वाह, क्या चीज़ बुनी है हमारी माया बिटिया ने, मजाल है जो जरा भी हवा लग जाए। माया ने तुम्हारे लिए भी तो जर्सी भेजी है ना, वह कहाँ है, पहनो ना, बढ़िया लगती है। माँ जी ने घबरा कर इधर उधर देखा। बहू रानी का दूर दूर तक नहीं पता था, गनीमत थी, नहीं तो मंजलू बहू की तारीफ वह सह नहीं पाती। चलना नहीं है, बाबू जी ने कहा तो उनकी तंद्रा टूटी। शाम को बाबू जी के साथ उन्हें मंदिर जाना बड़ा अच्छा लगता था। ड्राइवर अदब से दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो जाता था, नौकर हाथ देकर दोनों को उतारता था। सारे दृश्य को दर्शनार्थी बड़े मनोयोग से देखे थे, आंखों में श्रद्धा और आदर लिए हुए जब हाथ जोड़ते तो मन गौरव से भर उठता। हमेशा की तरह बाबूजी मंदिर में शास्त्रार्थ करने बैठ गए। माँ जी बेचैनी से प्रतीक्षा करने वाले ड्राइवर और सुखपाल को देखती रही। उन्हें लगा कि बाबूजी ज़्यादा देर लगा रहे हैं, जरूर ड्राइवर उन्हें मन ही मन कोस रहा होगा। दो चार बार याद दिलाने के बाद बाबूजी उठे। अपने ही जैसे दो तीन बुजुर्गों को उन्होंने गाड़ी में बैठने के लिए निमंत्रित कर लिया। माँ जी को फिर एक बार ड्राइवर की नाराजगी का डर हुआ। सारे रास्ते में उसे कुरेदते कुरेद कर उसके घर परिवार के संबंध में पूछती रही। बंगले में पांव रखते ही भुने हुए प्याज की गंध उनके नथुनों में भर गई। उन्हें रामलाल पर क्रोध हो आया। कितनी बार कहा सोमवार को प्याज मत छोका कर, तेरे बाबूजी खाते नहीं। लेकिन उसका क्या है, नौकर आदमी है, लेकिन इन लोगों से क्या एक दिन भी सब्र नहीं होता। वे भागी भागी रसोई में गए। सब्जी प्याज में छोंक दी रामलाल, अब उन्हें क्या परोसूंगी मैं, उन्होंने रोज से कहा। हुजूर, बड़े साहब के लिए लौकी अलग बना रखी है, एक बार कहने से भूलता थोड़े हूँ, रामलाल ने गौरवान्वित होते हुए कहा। माँ जी खुश हो गई। रात को बाबूजी की थाली उन्होंने कमरे में ही पहुँचा दी। तुम यही खा लो, उन लोगों के तमाम चीज़ों में प्याज डाल रखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बाबूजी ने निरी भाव से कहा। उन्हें नाती पोतरी के साथ लड़के के साथ बैठकर खाना अच्छा लगता है, पर माँ जी हफ्ते में 3 बार किसी न किसी बहाने उन्हें कमरे में ही खिला देती थी। उन्हें मालूम था बाबूजी के होने से बहू को बैठने में दिक्कत होती है, बच्चे भी उतना खुलकर हंस बोल नहीं पाते। माँ जी के सामने आखिर बाबूजी को झुकना ही पड़ा। उन्हें खाना खिलाने के बाद उन्होंने खुद खाया, फिर बाबूजी को टॉनिक के बाद गोली और गोली के साथ दूध, फिर उनका बिस्तर ठीक किया, दिन भर की मूड़ी तोड़ी चादर बदली, सिराने मफलर कंटोप बिस्तर के नीचे चप्पलें रखी, स्टूल पर थर्मस में गर्म पानी, खांसी दबाने के प्लेट में मुलहट्टी, लौंग और मिश्री के टुकड़े उन्हें बिस्तर पर लेटाने के बाद ही माँ जी को चैन मिला और फिर एकाएक उन्हें लगा कि वे बहुत थक गई हैं। सुबह से जैसे पाँव में भोरी बांधकर काम करती रही है। अब जाकर याद आया कि वे उम्र की 62 सीढ़ियाँ पार कर चुकी हैं, हमेशा जैसी मेहनत उनके बस की नहीं रही। बड़ा लड़का रोज की तरह जब कमरे में आया तब वह पाँव पर आयोडेक्स मल रही थी। लाओ मैं मल दूँ, उसने हाथ से शीशी छीनते हुए कहा। क्यों दिन भर हाय हाय करती हो, कितनी बार कहा कि बस बैठकर हुक्म किया करो, देखो बहू कुछ करती भी है या नहीं। कहाँ करती हो रे कुछ, उन्होंने कहा, पर उन्हें अच्छा लग रहा था। उनके थके शरीर को उसके बलिष्ठ हाथों का आधार बड़ा अच्छा लग रहा था। सुबह 8 बजे से पहले उठना नहीं कहकर जब वह चला गया था तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। अपने भाग्य पर उन्हें ईर्ष्या हो आई थी, कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी गृहस्थी इतनी आसानी से पार हो गई है। तीनों लड़के पढ़ लिख गए, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, लड़कियां खाते पीते घरों में चली गईं, वह में भी आई तो सुंदर सुशील, कभी किसी ने पलट कर जवाब तक नहीं दिया, आदमी को और क्या चाहिए। बस भोलेनाथ, अब इस भरे दरबार में से मुझे हाथों हाथ उठा लो, यही प्रार्थना है, उन्होंने दोनों हाथ माथे से टेक कर कहा। लेकिन उनकी बंद आंखों के सामने असहाय एकांकी बाबूजी की मूर्ति नाच उठी और उन्हें लगा बुलावा आ ही गया तो क्या वे निश्चिंत मन से जा सकेंगी। तो दोस्त, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।